नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के बीच किया विभागों का बंटवारा। राजनाथ सिंह रक्षा और अमित शाह के पास गृह मंत्रालय बरकरार। जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया है। राजनाथ सिंह को रक्षा विभाग सौंपा गया, जबकि अमित शाह को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्मला सीतारमन को एक बार फिर वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इसी तरह एस जयशंकर विदेश मंत्रालय में बने रहेंगे। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन विभाग दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान नए कृषि मंत्री होंगे। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय प्रदान किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की है। ये किस्त 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी।
पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रूपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यह राशि किसानों को 2,000 रूपये की 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ हुआ है और उनके बैंक खातों में 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
दरभंगा के किसान शंभुनाथ मिश्र ने कहा कि किसान सम्मान योजना से उन्हें खेती करने में आर्थिक मदद मिल रही है।
हम शंभुनाथ मिश्र दरभंगा जिला काशी गांव में रहनिहार। नरेंद्र मोदी जी काल शपथ ग्रहण ले लेते थे छेसर बेर और आई उनका मंत्रिमंडलक बैसार मंडलक बैसार में सबसे पहला जो उनका काज छ पहल काज हर छ किसान सम्मान निधि के दे सम्मान निधि दो किसान के प्रोत्साहित करी छथिन और किसान ऐसे लाभान्वित हो जा समय पर किस न किस तो सहायता भेटिए जाय हरेक किसान के 2,000 टाका अनुदान आब गए जैसे किसान अपन काज सुचारू ढंग से शुरू कर सकते हैं। के लिए हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से धन्यवाद कर दी।
इधर मुंगेर के मनीष कुमार ने किसान सम्मान योजना के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामना देते हुए कहा कि इस योजना से किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा है।
मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है, जिला मुंगेर। मेरे पास अच्छी खासी खेती है। साल में 6,000 रूपया किसान सम्मान निधि की तरफ से मुझे मिलता है। इस योजना से मैं बहुत खुश हूँ। आज तजुर्ब की बात है कि प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के साथ ही सबसे पहला जो साइन किया है वो किसान सम्मान निधि योजना पर ही साइन किया है।
प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पोस्ट में भी बधाई संदेश मिल रहे हैं। एक संदेश में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा दोनों देशों के लोगों के बीच मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। वहीं फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो ने कहा कि वे अपने संबंधों का विस्तार जारी रखने और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। उधर स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। इधर युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी के मुसेवेनी ने कहा कि अफ्रीका के लोग भारतीयों के साथ समान आकांक्षाएं और लक्ष्य साझा करते हैं। दोनों देश अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि श्री मोदी ने स्वास्थ्य, कृषि, महिला नेतृत्व वाले विकास और डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रगति के लिए नवाचार के स्रोत के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। इससे पहले कल श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से भेंट के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्धविकसित और विकासशील देशों की आवाज बुलंद करना जारी रखेगा। समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंधे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ, भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ की शामिल हुए। निर्वाचन आयोग ने पूर्णिया जिले के रूपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान अगले महीने की 10 तारीख को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। ये सीट जदयू की विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई है। राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी के वरिष्ठ नेत्री मीसा भारती को पार्टी के संसदीय दल का नेता बनाया है। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर परिवारवाद बढ़ाने का आरोप लगाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में दिल्ली जोन के वेद लाहोटी ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इधर पटना के अनिकेत गौहाटी जोन में दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर के प्रथम कुमार ने पांचवां स्थान प्राप्त किया है। इस परीक्षा में बिहार से 13,588 अभ्यर्थियों में से 800 से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश के लिए होने वाले ज्वाइंट सीट एलोकेशन सिस्टम जोसा काउंसिलिंग आज से शुरू हो रही है। काउंसिलिंग 18 जून तक जारी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह के साथ नीट परिणाम 2024 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम एफएम गोल्ड चैनल पर 7:10 पर सुर्खियों में और 9:15 पर स्पॉटलाइट पर प्रसारित होगा। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पछुआ हवा के प्रभाव से लोगों को सुबह से ही उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। इस अवधि में 46.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस सीजन में पटना का ये अधिकतम तापमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बांका, नालंदा और शेखपुरा सहित कई जिलों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी।
आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में निचले क्षोभ मंडल में शुष्क पश्चिमी हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में भीषण उष्ण लहर जारी रहेगी एवं उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान उष्ण दिवस होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात तापमान में कमी की संभावना है।
वहीं राजधानी पटना, गया और नालंदा जिलों के कुछ स्थानों पर रात में भी मौसम के गर्म रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बिहार के पैक्स और सहकारी बैंकों की भविष्य में भूमिका को लेकर आज बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि भविष्य में पैक्स संचालकों को कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी जैसे नए केंद्रों का संचालन करना है। श्री कुमार ने कहा कि इसके लिए नेटवर्क को मजबूत करना होगा और सारी बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा।
आने वाले समय में हम पैसों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह जी दिल्ली हम सबको बुलाया और वहां पर कार्यशाला हुआ और तय हुआ है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम पैसों को कम्प्यूटराइज करेंगे, पारदर्शी बनाएंगे। सो बिहार में काम शुरू हो गया है और आज हम लोग का प्लान जा करके है कि गेहूं का भी प्राप्ति का सवाल हो, मक्का का भी प्राप्ति जा करके हो, किसानों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री खरीद कृषि सदन योजना शुरू किया जाकर उसमें 15 लाख आम राशि लोन के रूप में देते हैं ताकि किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सके।
गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 लैपटॉप, 42 मोबाइल फोन, 75 सिम कार्ड और 16 एटीएम कार्ड सहित कई सामान बरामद किया है। सुपौल एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 47 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गर्मी के अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर शेखपुरा के विद्यालयों में प्रचंड गर्मी के प्रभाव से लगभग 25 छात्र छात्राएं चक्कर आकर बेहोश हो गए। पटना जिले के बिहटा में भीषण गर्मी की वजह से एक स्कूल छात्रा की नाक से खून निकलने लगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के बीच किया विभागों का बंटवारा। राजनाथ सिंह रक्षा और अमित शाह के पास गृह मंत्रालय बरकरार। जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। और राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।